नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए मंगलवार को पंजाब का दौरा करेंगे। वे स्थानीय हालात का व्यक्तिगत तौर पर जायजा लेकर प्रभावित लोगों के लिए अधिकतम मदद सुनिश्चित करेंगे। पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस दौरे की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस संकट को लेकर बेहद चिंतित हैं और इसकी निकटता से निगरानी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
पंजाब में स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। सीमावर्ती राज्य जहां अब तक 46 लोगों की जान जा चुकी है, भारतीय सेना बीएसएफ और एनडीआरएफ के विशेषज्ञों के साथ मिलकर बचाव और राहत कार्यों में एक दूसरे की मदद कर रहा है। लगभग 2000 गांव और 3.87 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के मेरा भारत आपदा मित्र भी प्रभावित जिलों में स्थानीय लोगों की मदद कर रहे हैं। राज्य सरकार ने मंगलवार से राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की घोषणा कर दी है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 13 तारीख को मणिपुर पहुंचेंगे और दो स्थानों पर जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री के राज्य दौरे पर चर्चा के लिए आज इम्फाल के राजभवन में एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने की। केंद्र सरकार के वस्तु और सेवा कर जीएसटी की दरों में हाल ही में किए गए सुधारों के फैसले को किसानों और आम नागरिकों ने हितकारी बताया है। व्यापारियों का कहना है कि इस फैसले से न केवल छोटे व्यापारियों को फायदा होगा बल्कि आम जनता को भी राहत मिलेगी। उधम सिंह नगर के किसान ठाकुर जगदीश सिंह ने कहा कि इससे छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को राहत मिलेगी।
किसानों से जुड़ी हुई जो चीजें, खाद है और तमाम चीजें, इन पे जो स्लैब नीचे आया है, इससे किसानों को और छोटे किसानों को लाभ इस पे पहुंचेगा और इससे किसान को काफी खुशी भी हुई है जीएसटी का स्लैब नीचे आया है।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि संडे ऑन साइकिल अब एक आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा है कि फिट रहने और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए 50 से अधिक सांसदों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री मांडविया ने कहा है कि साइकिल पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। उन्होंने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील भी की। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने चुनाव में मिली हार के बाद आज इस्तीफा दे दिया। वे एक वर्ष से भी कम समय पर पद पर रहे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चुनावी हार में उनकी सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी ने संसद में अपना बहुमत खो दिया है। इशिबा ने कहा कि उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। वे अगले प्रधानमंत्री चुने जाने तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। नाइजीरिया में उग्रवादी संगठन बोको हराम ने उत्तर पूर्वी बोर्नो राज्य के दारुल जमाल गांव पर हमले कर 60 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। नाइजीरियाई वायुसेना के प्रवक्ता एहिमैन एजोदामे ने कहा कि नाइजीरियाई सेना ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें 30 से ज्यादा उग्रवादी मारे गए। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मॉनसून की स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि प्रदेश में अब भी रुक रुक कर वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 से 6 दिन में राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर उत्तराखंड में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कल देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में आज गिरावट देखने को मिली। हालांकि ये अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। राजधानी के कुछ क्षेत्र अब भी बाढ़ जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं। निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में आश्रय दिया गया है। भारत ने पुरुष हॉकी एशिया कप चैंपियनशिप के फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हरा दिया। आज बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में मिली इस जीत के साथ भारत न केवल चौथी बार एशिया कप विजेता बन गया है बल्कि उसने अगले साल होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। भारत की ओर से दिलप्रीत सिंह ने 2 गोल किए जबकि सुखजीत सिंह और अमित रोहिदास ने 1-1 गोल किए। कोरिया के लिए डैनसॉन ने 1 गोल किया। इस बार इस चैंपियनशिप में भारतीय टीम कोई भी मैच नहीं हारी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।